में और काफी गहराई में चीजों को और लेना है, तो इसलिए प्रार्थना करके मैंने भजन को छोटा ही रखा है। तो आप सब लोग मेरे पीछे हाथ जोड़े और बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दसवां स्कंद चौथा अध्याय और 16 से 18 हम लोग श्लोक की करेंगे और 18वां श्लोक यहां पर है। तो जैसे विधि है, जो प्रभु जी से पूछा था मैंने कि 16 और 17 को केवल हम लोग पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा और 18वां का फिर हम लोग उच्चारण करेंगे पूरा। सत्व अहम त्यक्त कारुण्यस्य त्यक्त ज्ञाति सुहित खलः कान लोकान वही गमिष्यामि ब्रह्म हे वह मृतः श्वसन। मैंने दया विहीन तथा क्रूर होने के कारण अपने सारे संबंधियों तथा मित्रों का परित्याग कर दिया है, अतः मैं नहीं जानता कि ब्राह्मण का वध करने वाली व्यक्ति के समान मृत्यु के बाद या इस जीवित अवस्था में मैं किस लोक में जाऊंगा। तो कौन बात कर रहा है, ये कौन चर्चा कर रहा है? कंस। और किसको बोल रहा है? अपने बहन को और बहनों को बोल रहा है। 17वां, दैवम अप्य अनृतम वक्ति न मर्त्या एव केवलम यद विशंभाद अहम पापः स्वसुर निहत्वान चिशुनः। हाय, कभी कभी न केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं अपितु विधाता भी झूठ बोलता है, और मैं इतना पापी हूं कि मैंने विधाता की भविष्यवाणी को मानते हुए अपने ही बहन के इतने बच्चों का वध कर दिया है। अब 18वां जो यहां पर लिखा हुआ है, तो आप सब लोग जैसे विधि है मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे और फिर उसके बाद कुछ भक्त हैं वो इसका प्रयास करेंगे बोलने का। मा शोचतम महाभागा आत्मजान स्वकृतम भुज जान तवो न सदैकत्र दैवाधीन सदा सते। मा शोचतम महाभागा आत्मजान स्वकृतम भुज जान तवो न सदैकेत्र दैवाधीना सदा सते। मा शोचतम महाभागा आत्मजान स्वकृतम भुज जान तवो न सदैकेत्र दैवाधीनस्तदा सते। बोली दैवाधीनास्तदा सते। कृतम् दैवाधीनास्तदा सते। माताएं, मा शोचतम महाभागा न जान स्वकृतम भुजः
हरे कृष्णा। आप सबका भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में बहुत ही विशेष वक्ता उपस्थित हैं, हिज ग्रेस धनंजय कृष्ण प्रभु।
हरे
प्रभु जी, बहुत लंबे वर्षों के बाद यहाँ पे आए हैं और हम बहुत पुराने मित्र हैं हमारे। लगभग पिछले 25 वर्षों से अधिक इस कौन संस्था में सेवा कर रहे हैं और आजकल मिड डे मील जो नॉर्थ जोन है, मिड डे मील जो जिसका संचालन परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अंदर होता है, उस मिड डे मील नॉर्थ विजन के प्रभु जी वाइस चेयरमैन हैं और इनके अध्यक्षता में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में प्रतिदिन 4 लाख स्कूल के बच्चों को मिड डे मील कराया जाता है। बहुत ही एफिशिएंट और मटेरियल देखा जाए तो प्रभु जी क्वालिफाइड इंजीनियर और MBA हैं, बहुत अच्छे एक MNC में हाई प्लेस्ड इनकी जॉब थी, वो सब छोड़ के प्रभुपाद जी के मिशन में अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। और प्रभु जी की जो खूबी है, मैं इनको काफी वर्षों से बुला रहा था कि मैं मुड़ तब आऊंगा जब 10वां स्कंद शुरू होगा और इनको 10th कैंटो में, और वो भी भगवान की बाल लीला है, इनको बहुत प्रिय हैं और उन्होंने खूब गहन अध्ययन किया हुआ है जी गोस्वामी जी की, गोपाल चंपू का, विष्णु चकु ठाकुर जी की टीकाओं का, तो बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो इसलिए आज हमारा सौभाग्य है प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनके संग का पूरा लाभ उठाइए और इनका हम स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, और प्रभु जी रुक्मिणी कृष्ण प्रभु से आज्ञा लेते हुए और समस्त भक्तवृंद से आज्ञा लेते हुए हम कथा का प्रारंभ करेंगे। तो पहले जैसे हमारी विधि है कि पहले श्लोक का शब्दार्थ, मा शोचतम, जब दुखी ना हो, महाभागव, हे आत्मज्ञानी तथा भाग्यशालिनी, आत्मजान, अपने पुत्रों के लिए स्वकृतम, अपने कर्मों के ही कारण भुजह भोग कर रहे हैं, जानतवह सारे जीव जंतु न नहीं सदा सदैव एकत्र एक स्थान में दैव अधीनः, जो भाग्य के वश में है, तदा अतएव आसते जीवित रहते हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तो पहले मैं अनुवाद पूरा पढ़ूंगा, फिर आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। हे महान आत्माओं, तुम दोनों के पुत्रों को अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा है, अतः तुम उनके लिए शोक मत करो। सारे जीव परमेश्वर के नियंत्रण में होते हैं और वे सदैव एक साथ नहीं रह सकते हैं। आप मेरे पीछे पीछे दोहराएं। हे महान आत्माओं, तुम दोनों के पुत्रों को अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा है, अतः तुम उनके लिए शोक मत करो। सारे जीव परमेश्वर के नियंत्रण में होते हैं और वे सदैव एक साथ नहीं रह सकते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। कंस ने अपनी बहन तथा बहनोई को महाभागव कहकर संबोधित किया, क्योंकि यद्यपि उनके सामान्य बच्चों का वध कर चुका था, किंतु अब देवी दुर्गा इन दोनों से उत्पन्न हो चुकी थी। चूंकि देवकी ने दुर्गा देवी को अपने गर्भ में धारण किया, इसलिए उसने देवकी तथा उसके पति की प्रशंसा की। अनुसरगण देवी दुर्गा, काली इत्यादि के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं, इसलिए विस्मित कंस ने अपनी बहन तथा बहनोई के उच्च पद की प्रशंसा की। दुर्गा प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं है, क्योंकि वे ही प्रकृति के नियमों के नियंत्रक है, किंतु सामान्य जीव तो इन्हीं नियमों द्वारा विनियमित होता है। फलस्वरूप हम में से किसी को भी अधिक काल तथा साथ साथ रहने नहीं दिया जाता है। कंस इस तरह की बातों से अपने बहन तथा बहनोई को सांत्वना देना चाह रहा है। तो ये तात्पर्य बड़ा ही मधुर है, जैसे श्रील प्रभुपाद के सारे तात्पर्य होते हैं, तो इसमें जो मुख्य रूप से हम देख रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि देवकी ने दुर्गा देवी को अपने गर्भ में धारण किया है, तो हम इसके बारे में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और फिर जो प्रभुपाद जी ने इसको किस गहराई से इसके बारे में बात करी है और फिर विभिन्न शास्त्रों में इसके बारे में क्या चर्चा हुई है कि माता दुर्गा का स्थान क्या है और कैसे है, और हम उसी को लेते हुए हम आगे आज का कथा को बढ़ाएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ गूढ़ चीज़ों को मैं छूंगा और आशा करूंगा कि आप उसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बाद में मैं ये प्रश्न करूंगा कि आप लोगों ने कितनी अच्छी तरीके से सुना है। तो अपनी जो इसमें मेन जो है, ये दुर्गा जो है उनको योग माया भी बोला जा रहा है और योग निद्रा भी है। तो जो निद्रा देवी है उनसे भी विशेष आप लोग प्रार्थना करें, क्योंकि विषय में निद्रा देवी ने इवन क्या करती है, वो समय आने पर सबको सुला भी देती है। तो आप लोग अपनी पुलकित, आपके कमल नेत्र जो है उनको आप खुले रखने के लिए योग निद्रा माता दुर्गा माता का आह्वान भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो शब्द को देख रहे हैं वो दुर्गा देवी का बारे में बोला गया है। अच्छा, ओके, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी ने किया, मैं क्षमा चाहता हूँ। 16-17 जैसे हमने श्लोक करा था तो उसका अनुवाद पढ़ लेंगे फिर एक बार, ताकि पूरा फ्लो बन जाएगा। अनुवाद 16 का, मैंने दया विहीन तथा क्रूर होने के कारण अपने सारे संबंधियों तथा मित्रों का परित्याग कर दिया है, अतः मैं नहीं जानता कि ब्राह्मण का वध करने वाला व्यक्ति के समान मृत्यु के बाद या इस जीवित अवस्था में मैं किस लोक में जाऊंगा। 17 हाय, कभी कभी न केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं अपितु विधाता भी झूठ बोलता है, अतः मैं इतना पापी हूं कि मैंने विधाता की भविष्यवाणी को मानते हुए अपने ही बहन के इतने बच्चों का वध कर दिया है। और फिर 18 को फिर से पढ़ लेते ताकि फ्लो बना रहेगा। ये महान आत्माओं, तुम दोनों के पुत्रों को अपने दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा है, अतः तुम उनके लिए शोक मत करो। सारे जीव परमेश्वर के नियंत्रण में होते हैं और वे सदैव एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के इसी अध्याय के 10.4.9 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात को बताते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने वहां पे छोड़ दिया था कि अदृश्यत अनुजाह विष्णु स आयुध अष्ट महाभुजाह। बहुत संस्कृत बड़ा सरल है और बड़ा मजेदार है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। अदृश्यत अनुजाह, क्या बोला है, अनुजा, ये संस्कृत है, बड़ा सरल है और बहुत मजेदार भी है, और आपको इसकी गूढ़ चीज में जाने का प्रयास करेंगे। अनु, अनु जा, जब स्त्री होती है या किसी जो पुत्री के बारे में जब चर्चा की जाती है तो जा लगता है आगे, ज जन्म, जन्म से संबोधित होता है, तो ज लगता है पुरुष के लिए और जा लगता है स्त्री के लिए। भूमि जा, भूमि की पुत्री कौन है, सीता, सीता मैया को बोला जाता है। तो इसी तरह यहां पर क्या बोला है दुर्गा मैया को, अनुजा, और अनु मतलब पहले, हां, और अग्र मतलब बाद में। तो ये क्या है, जिसने जन्म लिया है, अग्र मतलब बड़ा है और अनु मतलब छोटा है, छोटी है, मतलब जिसने जन्म के हिसाब से वो बाद में जन्म लिया है और अग्र मतलब पहले जन्म लिया। जैसे दाऊ को हम क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण के कृष्ण अग्रज, कृष्ण के बड़े भाई, अग्र मतलब पहले जन्म लिया हुआ है वहां पर। तो अनुजा, तो अनुज, अनुजा बोला गया यहां पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये अग्रज के बाद, इसके पहले जो थे कौन थे, विष्णु है, कृष्ण है, कृष्ण के बाद जिसका जन्म हुआ है। तो ये जो दुर्गा माता, वो किसकी, किसकी पुत्री, किसकी पुत्री के रूप में जिसने जन्म लिया था, माता यशोदा। तो जब यशोदा के शरीर से जन्म उत्पन्न लिया है उन्होंने, तो उनके अग्रज कौन हुए, उनके बड़े भाई कौन हुए दुर्गा के, कृष्ण। पर यशोदा की तो कोख से कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, कि लिया है, लिया है। प्रभुपाद जी ने 2-3 जगह पर ऐसी बात बोलकर छोड़ दिया है कि कृष्ण और कृष्ण जो है वो एक ही समय में यशोदा के भी पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं और देवकी के पुत्र के रूप में भी जन्म ले रहे हैं, और इसको पूरी तरह से सार्थक करते हैं जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ गोपाल चंपू में भी। फिर प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक चैप्टर 2 में बताया कि कृष्ण एंड योग माया अपियर्ड एज ब्रदर एंड सिस्टर, तो उनकी छोटी बहन के रूप में जो दुर्गा माता है वो जन्म लेती है। अब वो गूढ़ विषय है, वो अलग विषय, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे कि कैसे जो है वो एक समय पे दोनों का जन्म हुआ है, क्योंकि वो एक विस्तृत कथा है जिसमें कैसे चतुर्भुज रूप में जन्म लेते हैं देवकी के रूप के पुत्र के रूप में, और उसको बोला जाता है वसुदेव नंदन, और यहाँ पे नंद नंदन के रूप में द्विभिज दो हाथों के रूप में जन्म लेते हैं यशोदा पुत्र के रूप में। तो ये हमारे को यहां पर हम लोगों को छोड़ दिया जाता है बताते हुए कि अग्रज कौन है, ध्यान से सुनना है, उनके बड़े भाई हैं कृष्ण और बहन कौन हुई दुर्गा, छोटी दुर्गा योग माया। तो गोपाल चंपू 3:93 के अंदर भी बताया गया है, सदा कुर्वती तत् समस्तान अतीतम विधाय अग्रजातम स्वयं प्राप जातम। बहुत अच्छा संस्कृत है, समस्तान अतीत, समस्तान समस्त अतीत, सभी सर्वातीत, सर्वातीत कौन हुए भगवान कृष्ण के, क्या विधाय अग्रजातम, कृष्ण को अग्र बना के आगे बनाकर स्वयं प्राप जातम, स्वयं उन्होंने जातम जन्म लिया। बहुत सरल है, कुछ वो मुश्किल नहीं है, और मैंने स्टडी करी, मैं संस्कृत का नहीं हूं, मैं तो प्रभु जी से सीखता हूं उनके साथ बैठकर, संस्कृत जो है बहुत प्रयास करके मैंने बहुत 5-6 घंटे लगाता हूं तब जाके कथा का तैयारी करता हूं, तब जाकर आती, क्योंकि प्रभुपाद जी बोला कि कथा की तैयारी करके आना चाहिए। हा? तो क्या है, समस्तान अतीत विधाय अग्र जातम, योग माया ने अग्र कृष्ण को अग्र अपना बड़ा भाई बनाकर स्वयं प्राप्त जातम, बाद में खुद प्राप्त हुई, जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया। तो दुर्गा माता जो है वो स्पष्ट रूप से ये बताया जा रहा है कि वो कौन है, उसी यशोदा की जब पुत्री है तो यशोदा की कोख से ही कृष्ण का जन्म हुआ है, यहां से ये भी पता चल जाता है। और वैसे वो जो बहुत डिटेल के अंदर है वो कभी अलग से कोई क्लास होगी जिसमें हम लेके चलेंगे, जिसमें बहुत स्पष्ट आ जाता है कि कृष्ण को बोला गया है सुखदेव महाराज ने नंद आत्मजम, आत्म मतलब अपनी बॉडी, अपना शरीर, सेल्फ, और ज मतलब जब पुरुष होता है, जब बॉय होता है तो उसको ज बोला जाता है, और जा जब होता है वो पुत्री को बोला जाता है। तो नंद आत्मजम जब श्रीमद् भागवतम में सुखदेव स्वामी बता रहे हैं तो इसका मतलब नंद के शरीर से उत्पन्न हुआ है, केवल शब्द के लिए और केवल बताने के लिए नहीं है कि वो आत्मजम है, नंद का पुत्र ही है, ये बार बार बोला गया है श्रीमद् भागवतम 10:5:1, 10:8:19 और 10:11:6, इसमें भी बार बार नंद आत्मजम आ रहा है। तो बहुत प्यारी बात है कि वो एक अलग विषय है, पर नंद और यशोदा का पुत्र स्वयं कृष्ण जो है वो एक समय में यहां पर जन्म लेते हैं और देवकी के वहां पर भी जन्म लिया करता है। तो इसीलिए यहां पर जो दुर्गा के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करें, दुर्गा माता के ऊपर, तो वो अनुजा है, जैसे कि एवा तब अनुजा बाला, देवकी को बोला गया क्या अनुजा, तब अनुजा तुम्हारी जो बाला है, तुम्हारी जो जो छोटी सी पुत्री है के रूप में है, छोटी सी बच्ची के रूप में कौन है, तब अनुजा है। यहां पर भी अनुजा वर्ड बोला गया पर यहां पे देवकी को बोला गया, तो जहां भी जा लगता है तो वो पुत्री का ऊपर बताया जाता है और एक फीमेल को बताया जाता है। अब जो इसके बारे में बताया गया है कि दुर्गा देवी के ऊपर हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो, प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट बताते हैं 7:20 भगवद गीता, कामैस तैस तद ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य, जो काम से जिन बुद्धि जिसकी जकड़ी हुई है या चुरा ली गई है वही देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। तो दुर्गा माता का बहन है, छोटी बहन है, तो हमें बहन को प्रसन्न करेंगे तो भाई प्रसन्न हो जाएगा, ये बात नहीं आ रही है बीच में। हम ये ना सोचे कि नवरात्रे का ये तो छूट मिल गई है, अब तो भैया बहन को प्रसन्न कर लो भाई अपने आप आ जाएगा, ये नहीं है, काम ही से तई सर ज्ञाना है। तो पर प्रभुपाद जी इसको बड़ा अच्छा कहते हैं कि एक समय पर क्या हो रहा है कि पावर एंड पावरफुल हैव बिकम ब्रदर एंड सिस्टर। कृष्ण बुक चैप्टर 2 में प्रभुपाद बताते हैं पावरफुल कौन है, कृष्ण, और पावर कौन है, दुर्गा माता। पर ये क्यों हुआ? क्योंकि दुर्गा माँ की बड़ी इच्छा होती है कि मैं भी कृष्ण के संबंध से ललायित हूं, मैं भी कृष्ण की किसी तरह से बहन बनना चाहती हूं। क्योंकि ये क्या, कौन है? शिव जी की सबसे प्रिय है। और शिव जी जो है कौन है? वैश्वानाम यथा शंभु है। वो हर वक्त अपनी पत्नी को भक्ति में लगाते हैं, उसको पूरी तरह से उस पथ पे लगाने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं किसी की सुंदर पत्नी हो तो उसका कार्य एक ही होना चाहिए कि उसको कैसे न कैसे तरीके से भक्ति में पूरी तरह आश्रित कर दे, नहीं तो वो किसी और के संरक्षण में चली जाएगी, तुम्हारा आश्रय छोड़ देगी। तो बोलते शिव जी का ये गुण है कि वो कैसे ना कैसे तरीके से दुर्गा माँ को उन सब बातों को हटाकर केवल कृष्ण भक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं। इसलिए राम नाम की दीक्षा जो होती है वो दुर्गा माता किससे लेती है? कृष्ण शिव जी से। और कृष्ण नाम की दीक्षा किससे ली उन्होंने? हरिदास ठाकुर से। और प्रभुपाद जी इसको बहुत बता रहे कि वो दुर्गा इसीलिए इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है, और इतनी वो है कि उनका कार्य यही है कि अपने पति को प्रसन्न करें। पति के पास घर नहीं है कैलाश पर्वत पर, पति के पास में कोई अपनी जायदाद नहीं है, पर पति के पीछे पीछे चल रही है और पति को संतुष्ट कर रही है। तो ये बात को बताते हुए उसके अंदर जब इतना भाव आ रहा है तो फिर उसी इच्छा को कृष्ण पूरा करते हैं। हरिवंश पुराण है जो वेदव्यास जी का 2:35 में बताते हैं कि उसी पते की तुम नंद गोप की प्यारी पत्नी जो है उसके नवम गर्भ के रूप में, नौवे गर्भ के रूप में हमारे कुल में उत्पन्न हो जाओगी। हमारा कुल बोला है और नवम गर्भ के रूप में बोला है ना। तो आठवां गर्भ कौन हुआ था और नवम गर्भ क्या हो गया? स्पष्ट क्लियर यहां बता रहे आगे। और क्या बोला? तस्यास्त्वम नवमो गर्भे कुले अस्माकम भविष्यसि। स्पष्ट, कुले अस्माकम, अस्माकम मेरे, हमारे कुल में तुम जन्म लोगी। नवम्यामेव संजाता कृष्ण पक्षे वही तथौ। यह भी बता दिया कि कब होने वाली है, तुम भाद्र पद के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के नवमी, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी कौन सी है? जन्माष्टमी। पर इसके अंदर एक भेद यह आ जाता है कि इतनी जल्दी एकदम ही कृष्ण का जन्म हुआ और उसी के बाद में जो है जब आ गए वसुदेव जी लेकर आए तो दुर्गा जो थी वहां पर बैठी हुई थी, तो उसको भी क्लियर किया विष्णु पुराण 5:178 में कि जो 8 और 9 का जो लगन है वो इकट्ठा लग गया था, इसीलिए एकदम जो है जन्म हुआ दुर्गा का भी उसी समय और कृष्ण का भी उस समय। तो वो ये बड़ा क्लियर यहां पर इस चीज को बता दिया गया कि भाई ये जो कृष्ण है वो पहले जन्म लेते हैं और उसी के साथ में जो है बाद में दुर्गा देवी जन्म लेती जा रही है, क्योंकि दुर्गा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इसी चीज को फिर ब्रह्मा जी भी गोपाल चंपू 3:108-2 में बोलते हैं, अंशेन संभवश्यति श्री कृष्णस्य द्विज भुज रूपेण आकार भदेन, कि तुम जो स्वांश जो स्वयं कृष्ण है तुम क्या करोगी, उसी श्री कृष्ण जो दो भुजा वाले रूप वाले कृष्ण है जो आकार वाले हैं, आकार भेदेन सह मिलिष्यति से अति ब्रह्मणो अभिप्राय। ये ब्राह्मणों अभिप्राय मतलब ब्राह्मण ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं कि तुम उसके साथ तुम्हारा जन्म होगा, क्योंकि को बड़ी इच्छा उसकी रखी हुई थी दुर्गा माता की एक बहन के रूप में बनने के लिए। तो ये इच्छा को पूरी करने के लिए कृष्ण जो है वो पूरा करते हैं वहां पर करने के लिए। तो अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जो जो योग माया है जिसको दुर्गा माता भी बोला जाता है उसके बारे में कहां क्या बारे में बात करी गई है, कि ये जो योग माया है या इसको योग निद्रा भी बोला जाता है, ये कभी कभी इससे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में और इस गोपाल चंपू में 3 जगह पे बताया गया, एक तो पूर्णमासी हैं जिनको भी योग माया बोला गया, और एक सुभद्रा देवी है उनको भी योग माया बोला गया, और एक दुर्गा जो है वो तो खुद ही योग माया के बारे में बताया गया। पर योग माया और महामाया में फर्क है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो मटेरियल जो भौतिक संसार में और उसके चलन को कंट्रोल करने के लिए है वो कौन है? महामाया। और जो अध्यात्म और उससे जुड़े हुए सब चर्चाओं के साथ जुड़ी है, जो कृष्ण के ऊपर भी जिसका कंट्रोल है योग माया का,
और कृष्ण से जुड़े हुए सब जो उनका वंश चला रहा है उसके साथ भी जो जुड़ा हुआ है, तो वो है कौन है? श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, और कृष्ण बलराम की जय। तो हम लोग अब ध्यान देंगे कि गोपाल चंपू 3.101 में क्या बता रहे हैं, कि यहां पर एक चीज और बड़ी सुंदर तरीके से बताई जा रही है कि कब कृष्ण जो है वो देवकी के गर्भ में जब आते हैं तो साथ साथ यशोदा के गर्भ में भी पहुंच जाते हैं उस एक ही समय में। जो कृष्ण है वो जैसे हमने देखा था कि वसुदेव जी के मन में पहले आते हैं और वसुदेव जी के मन से देवकी के मन में जाते हैं, उसी तरीके का भी यहां पर भी है। यहां नंद बाबा के मन में आए और उसके बाद कहां पर हुए, कृष्ण हृदय कमल में यशोदा के हृदय में वास करते हैं, जो हृदय कमल है उसके ऊपर आते हैं यशोदा के, और जो कुमारिका है जो दुर्गा है वो उदर में निवास कर जाती है, जो उदर जो उनकी गर्भ है उसमें एक समय पर चली जाती। दोनों का क्लियर बताया गया है, गहराई के अंदर बहुत क्लियर बताया गया, और यह भी बताया गया किस समय में। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस महाराज इस ग्रंथ को बहुत उच्च कोटि का बताते हैं और प्रभुपाद भी चर्चा करते हैं कि यहां पर काफी ज्यादा जो है भक्ति और जो उसके बारे में अगर कुछ और गहराई में समझने का प्रयास करते हैं, पर किसी वैष्णव या प्रतिनिधि से पूरी परमिशन लेके डिस्कस करके ही आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि वो समझ में आता ही नहीं है, ना कंफ्यूज होते हैं और बाकियों को भी कंफ्यूज करते हैं। तो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में, माघ महीने के सबसे पहले दुर्गा माता जो है वो आई यशोदा के उधर में, यहां तक डिटेल में है। और जन्म कब हुआ है, भाद्रपद में, तो रफली देखें तो 6 से 7 महीने तक वो यशोदा के गर्भ में रहती हैं, और आभास किया हुआ है कि हाँ जो गर्भ के अंदर वो पूरी तरह से है। और इतना सुंदर तरीके से बता रहे हैं उसके अंदर कि जब यशोदा के गर्भ में कृष्ण जो है वो हृदय कमल पर हैं, और जो गर्भ जो है उसको उसमें जो है ये स्वयं आई हुई है दुर्गा, तो यशोदा इतनी सुंदर लग रही है, यशोदा का रूप इतना प्यारा हो रहा है, तो यशोदा जो शब्द है बोलते कि तू अपने कुल को और यश दे रही है, इसलिए तेरा नाम यशोदा है। यशोदा इति यशोदा, जो यश दे रही है अपने कुल को वो यशोदा है। और यशोदा इतनी सुंदर लग रही थी क्योंकि कृष्ण को उसने धारण कर रखा था कि पूरे जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। जैसे जब कृष्ण को हम अपने हृदय में करते हैं और भक्त लोग आगे बढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हाउ ब्यूटिफुल दीज डिवोटीज लुक लाइक, उनका चेहरा क्यों इतना प्रकाशमय होता है, उनका चेहरा इतना सुंदर क्यों लग रहा होता है, भक्तों का चेहरा इतना आगे क्यों लगता है, क्योंकि कृष्णमयी हो गए होते हैं, कृष्ण के बारे में चिंतन करते करते उनका हृदय भी कृष्ण जैसा हो जाता है, और इसलिए वो प्रकाश उनके चेहरे पर होता है। तो उसी तरह यशोदा के पूरे शरीर से ऐसे रोशनी निकल रही थी, ऐसा प्रकाश निकल रहा था कि सब लोगों को बोध हो गया था कि हाँ आज हमारी जो रानी है, जिसके लिए हम इतने सालों से तपस्या कर रहे थे, जिसके लिए हम इतना चिंता कर रहे थे, केवल एक ही भाव हुआ करता था कि यशोदा और नंद बाबा के घर कब पुत्र आएगा, नंद के आनंद भयो जय कृष्णला, कब होगा ये बात, ये कब वो दिन आएगा। तो आज हमें आभास हो गया कि गर्भ के लक्षण दिख रहे हैं, और इतना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं जीव गोस्वामी कि जैसे एक मटका, एक शीशे के मटके के अंदर अगर दिया रख दिया जाए और उससे जैसे प्रकाश बाहर निकल कर आता है, उसी तरह से उस मटके रूपी गर्भ के अंदर कृष्ण रूपी दीपक बड़ा हुआ था जो कि प्रकाश फैलाया जा रहा था, और यशोदा जो है पूरी तरह से प्रकाशित हो रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी अद्भुत लग रही थी, इतना ज्यादा उसके अंदर अपना रूप आ गया था, और पूरी तरह से सारे देवी देवता जो है वहां पर पहुंच गए थे उस यशोदा के संग करने के लिए। और वही यशोदा जो है आगे बताते हैं कि कैसे उसके हृदय के अंदर और जठर में जो दुर्गा माता है, यशोदा के जो है एक सामान्य गर्भवती स्त्री की तरह उसकी भी इच्छा हो रही थी, जैसे गर्भवती स्त्री की इच्छा होती है खट्टा खाने की, पर यशोदा की इच्छा क्या हो रही थी, तुलसी युक्त कपूर युक्त खीर खाने की। यहां तक जीव गोस्वामी जो है और वो दर्शन कर रहे हैं, उसको हर एक इच्छा जो थी ऐसी पूरी थी कि जैसे जो पूरी सात्विक चीज तो छोटी है, विशुद्ध सत्व से भी परे, क्योंकि स्वयं पर ब्रह्म उसके हृदय में आए हुए थे। फिर यहां पर एक प्रश्न उठता है कि भाई नंद बाबा जो हैं वो भी कितने प्रसन्न जो हो रहे हैं, और नंद के अंदर कभी कभी ये भी बताया जाता है, कोई प्रश्न करता है इस तरह से कि नंद के अंदर इतना भाव पुत्र का जो है वो आ रहा है, वसुदेव के अंदर जो है एक्चुअल तो वसुदेव ही उसके पिता हैं, जो सामान्य भागवतम और हर जगह बताया जा रहा है, तो उसको भी क्लैरिफाई कैसे करते हैं कि जो जब कोई व्यक्ति कृष्ण का चिंतन करता है तो कृष्ण उसके हृदय में आ जाते हैं। ध्यान से सुनिए, गहराई है। जब कोई कृष्ण के बारे में सोचता है और चिंतन करता है तो कृष्ण उसके हृदय में आ जाते हैं, केवल हृदय में आ जाते हैं। पर जो ब्रजवासी के सारे अंगों से कृष्ण कृष्ण निकलता है, वो कृष्ण केवल हृदय में क्यों सीमित रहेंगे? जिसका हर अंग ही कृष्ण के प्रति ललायत है, जिसका हर अंग ही कृष्ण के चिंतन में पड़ा हुआ है, उसके हर अंग से ही कृष्ण निकल रहा है, तो कृष्ण जो है उस उन सब ब्रजवासियों के हृदय के अलावा हर जगह पे घूमते रहते हैं। तो नंद बाबा ने भी अपने हृदय पटल में ही केवल कृष्ण को नहीं कैद किया हुआ था, पूरी तरह वो उसके भाव में थे, और उस भाव को ही रखते हुए उसी भाव पुत्र रूप भाव को पकड़कर ही नंद बाबा के अंदर पूरी तरह से पितृ भाव जो आया है वो जन्म देने वाले व्यक्ति से भी ऊपर हो जाता है। अगर जन्म देने वाला के अंदर ही केवल पिता भाव होता तो कितना सुंदर बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की नासिका से कौन निकला था, तो ब्रह्मा जी के अंदर पितृ भाव क्यों नहीं आया? निकला है तो उसे क्यों नहीं आया? और अगर नरसिंह भगवान जो है वो इस खंभे में से निकले थे तो खंभे में पितृभाव क्यों नहीं आया? तो इसीलिए वात्सल्य की यही भूमिका है, वात्सल्य का यही रस है कि अगर पूरी तरह से हम नंद बाबा के पीछे अनुकरण करते हैं, उसको कॉपी नहीं करना है, कॉपी करते हैं मायावाद हो जाता है, अगर हम पूरी तरह से उस भाव के अंदर आ जाते हैं तो कृष्ण के प्रति हमारा भाव जो पिता के रूप में निकलना स्वाभाविक जो है वो पूरी तरह से एकदम ऑथेंटिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। पर यह चीज ये नहीं होनी चाहिए कि भाई आप हम लोग जबरदस्ती अपने घर में गोपाल है, लड्डू गोपाल है, केवल हम ये सोचना शुरू कर दें अब तो मैं स्थिति में आ गया हूं कि मुझे बाकी सब चीजों को छोड़ देना चाहिए, अब और जरूरत क्या, अब तो मैं बहुत आगे स्थिति में, नहीं, इसको बहुत गलत बोला गया। एक बार गिरिराज महाराज के साथ प्रभुपाद की जब ये चर्चा हुई तो उन्होंने ये बात बताया कि ठीक है आप वात्सल्य भाव को पकड़ रहे हो, आप शांत भाव को पकड़ दस भाव को पकड़ रहे हो, पर ये नहीं कि ये चार नियमों से आप अलग हो जाओ। वात्सल्य के भाव को पकड़ना है, दास्य भाव को पकड़ना है, सखा भाव को पकड़ना है, पर साथ ही साथ इस 16 माला का जो हमारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो ये मंत्र है इसको हम पूरी तरह ले रहे हैं, चारों नियमों का पालन कर रहे हैं, और प्रभुपाद के जो प्रतिनिधि है उसके दी हुई सेवा के अनुसार चल रहे हैं, तभी इस चीज को हम आगे अपने आप हमें ये रिवील कर दिया जाएगा, अपने आप ही ये अपने सामने ये भाव आ सकता है कि हमारा रस, हमारा भाव किस रस के अंदर है। हम लोग शांत रस में है, दास्य में है, वात्सल्य में है, उसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और एक बड़ा जरूरी बात करते हैं कि जो सेवा है, सर्विस है, वो सबसे जरूरी है। अगर सेवा दी हुई सेवा को पूरी तरीके से नहीं लेंगे और उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो निश्चित ही दुर्गा माता जो है वो तुम्हें बाकी चीजों में लगा देगी, क्योंकि दुर्ग इति दुर्गा, दुर्ग का दुर्ग को संचालन करने वाली दुर्गा है, उसका काम ही है ये चेक करना, अरे तुम मेरे भाई के पास जाने वाले हो, तुम तो मेरे सबसे ज्यादा प्रिय अग्रज के पास जाने वाले हो, कम से कम देख तो लूं तुम उस लायक हो या नहीं, इसीलिए चेकिंग चलती रहती है। इसलिए ब्रह्मचारियों के आसपास जो है ध्यान भटकाने के लिए बहुत वस्तुएं भेजी जाती है, नहीं ग्रस्तों के पास और ज्यादा टेंशन है क्योंकि लाइसेंस मिला हुआ है उनको, है? तो उसके लिए व्यभिचार के लिए फिर चेकिंग चलती रहती है, प्रभुपाद कहते हैं दिस अ ट्रिक ऑफ माया, माया आपको कब ट्रिक कर जाएगी ये पता नहीं चलेगा अगर हम लोग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज के बीच में नहीं है, हम लोग भक्तों का संग अगर त्याग देते हैं तो फिर हम लोग दूर हो जाएंगे, क्योंकि दुर्गा का यही काम है और कोई दुर्गा का काम है ही नहीं। रुक्मिणी जी भी दुर्गा का संग कर रही है, प्रभु जी का जो नाम भी इतना सुंदर रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, तो दुर्गा का संग करती है, पर किसलिए संग कर रही है कि कृष्ण यही सबसे अच्छी जगह है जहां से तुम मुझे उठाकर ले जा सकते हो। दुर्गा माता के मंदिर में ही गई थी ना, दुर्गा के बारे में ही करती हो, चिट्ठी में भिजवाया था कि मैं वहीं पर जाऊंगी, तो दुर्गा वहां पर मदद भी करती है। और एक भक्त है जिनका नाम है गोविंद कविराज, जिनको जीव गोस्वामी ने कविराज की उपाधि दी है, वो भी दुर्गा के भक्त हैं, पर दुर्गा के प्रति उनका भाव इस तरह से है कि मुझे कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। अगर पीढ़ी दर चले आ रहे तो अगर पूरी तरह से दुर्गा के उस वंश से चले आ रहे, कुल की परंपरा से चले आ रहे होते हैं तो वहां पर ज्ञान मिल जाता है और फिर वो कृष्ण भक्त अपने आप ही बन जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है इस चीज को जानना और पहचानना। तो कृष्ण के साथ जब यशोदा ने अपने हृदय के अंदर पूरी तरह धारण किया और दुर्गा को अपने गर्भ में धारण किया, तो क्या हुआ कि जब समय आया नवे महीने का, तो उस समय बहुत ही सुंदर बात हुई उस समय कि कृष्ण का जो है वो तो स्वयं जन्म हो गया और सब लोगों ने कृष्ण को देखा और यशोदा के यहाँ पर कृष्ण के बारे में बहुत चर्चा हुई और पूरे ब्रज के अंदर बात हो गई रात के समय में, और बहुत लोगों को पता चल भी गया कि हाँ ये कृष्ण जो है वो अब इनके पुत्र बन गए हैं। और उसी समय जो है वो क्या हुआ कि रात जब जैसे हुई तो प्रसव का इतना परेशानी और कष्ट की वजह से यशोदा सो गई वहाँ पर ही, और उस समय जो स्वयं दुर्गा माता है उसने फिर अपना कार्य किया, और उसने क्या किया, वही कार्य किया जो रोहिणी के गर्भ में किया था। क्या किया था उन्होंने, उन्होंने स्वयं देवकी के गर्भ से संकर्षित किया, वहां से आकृष्ट किया था किसको, स्वयं बलराम को, और लेकर आई थी और उन्होंने स्थापित किया था रोहिणी के गर्भ में। उसी तरह का कार्य भी यहां पर उन्होंने किया, और उन्होंने योग निद्रा ने पहले देवकी के जो गर्भ में जो कृष्ण जहां पे जन्म ले चुके हैं यहां से कृष्ण को उठाया और निराकार रूप में जो थी समय निराकार रूप में स्वयं दुर्गा जो है वो कृष्ण को ले जाती हैं, दो भुजा कृष्ण को, और मथुरा में पहुंचा देती है। और उसी समय देवकी जो है कृष्ण के जो चतुर्भुज रूप को देखकर जो परेशान हुई हुई है और प्रार्थना कर रही है कि हे कृष्ण तुम जो है अपना इस चतुर्भुज रूप को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे स्वरूप को देखकर क्या होगा, कंस को पता चल जाएगा कि तुम ही विष्णु हो। उसी समय चतुर्भुज रूप जो है वो विलीन हो जाता है उसके अंदर, दो भुजा वाले रूप के कृष्ण के अंदर, और कृष्ण वहीं पे बैठ जाते हैं। तो फिर से समझा रहा हूं, जो निराकार रूप के अंदर जो दुर्गा माता है, बताते हैं जीव गोस्वामी बड़े सुंदर तरीके से, जैसे गंध को, जैसे खुशबू को हवा लेके जाती है, जैसे कमल को हवा लेके जाती है बहुत तेजी से, उसी तरह से उसने इस द्विभिजा रूप वाले अपने छोटे अपने बड़े भाई को कृष्ण को लेकर गई, कहां से, गोकुल से लेकर गई, मथुरा पहुंचाया। उसी समय चार भुजा वाले जो कृष्ण है वो दो भुजा वाले कृष्ण के अंदर विलीन हो जाते हैं और वो वहीं पे रहते हैं। फिर वसुदेव जी उनको लेकर यहां पर आ जाते हैं, और उसी समय क्या होता है, जो दुर्गा है वो स्वयं आकर यशोदा के शैया पर आकर लेट जाती है और अपने रूप को धारण करके वहीं पर बैठ जाती है। तो स्वयं पुत्री के रूप में यहां पर स्थापित हो गई, वहां पर कृष्ण स्थापित हो गए, और अब वसुदेव जी उनको लेकर आएंगे, यहां पर छोड़ेंगे और यहां से छोटी बहन को ले जाकर वापस ले जाएंगे। तो प्रश्न उठता है, तो कृष्ण कह रहे पाद एकम न गच्छति वृंदावन परित्यज्य, मैं वृंदावन को छोड़कर जा ही नहीं सकता हूं, तो कैसे चले गए। तो इसी तरह होता है कि कृष्ण यहां पर भी अपने आप को अदृश्य रूप में रह जाते हैं और जो उनका अंश रूप में वहां पे चले जाते हैं पूर्णांश रूप में, क्योंकि अपने आप को वो विस्तार कर लेते हैं और वहां पर पहुंचकर वहां से यहां पर भी आ जाते हैं। तो ये बताया गया इसमें कि अथ पुनस्तेन गर्भस्थेन आकरणेन मातु प्रसूति भ्रमंचः संप्रतस्य बाहिर आत्मनाम संलभ्य प्रसूति शय्यामेव आविदश्यस्य स्थित्वति। बहुत सुंदर शब्द बताते हैं कि वही योग माया ने गर्भस्थेन आकरेण, जो गर्भ में स्थित आकार द्वारा माता प्रसूति भ्रम, माता को प्रसूति का भ्रम पकड़ाया। फिर से जो नौवे गर्भ में प्रसूति का भ्रम दिया उनको, और संप्रदस्य मतलब बढ़ाया, और बहिर आत्मनम बाहर अपने आप को प्रकट कर दिया, क्योंकि वही बाहर जो गई थी अब वापस आ गई। प्रसूति शय्याम एवाधिश्यस्य स्थितवती, और प्रसूति शैया जो मैटरनल हॉस्पिटल का बेड है ना, प्रसूति शैया उस बेड पे आकर वो पूरी तरह से लेट गई। और यहां पर अपने आप को यशोदा के पास में लेटी रही, और यशोदा जब जो सुबह जब उठी तो उनको ये पता ही नहीं था कि मेरी पुत्री कब हुई है और पुत्री कहाँ गई। उनको तो केवल जन्म के समय उन्होंने अपने पुत्र को बस देखा था अंश थोड़ी देर के लिए और वो भूल जाती है। दुर्गा माता जो है वहीं पर अपना स्थान लेती है, और फिर जो आज का श्लोक है इससे पहले हमने देखा कि वही नंद जो के घर से और वसुदेव जी आते हैं, और वसुदेव जी जो हैं वो वापस अपने पास में उस दुर्गा माता को लेके चले जाते हैं, और उसको जो है कंस उठाता है, और जब वो नीचे पत्थर पे मारने की कोशिश करता है तो वो बाहर निकलती है, और अष्ट महाभुजा आठ महाभुजाएं लेती हुई वो अदृश्य हो जाती हैं, उसको ये मैसेज देकर कि मैं जो तेरा काल जो है उसने जन्म ले चुका है। और प्रभुपाद जी ने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को ये और समझाया है कि जो हम लोग कभी भी इस चीज से भ्रमित ना रहे कि कैसे दुर्गा का हमारे जीवन में जो रोल है वो सीमित है। हम लोग दुर्गा देवी के पास में और कोई कारण से नहीं जाते हैं, केवल इसी कारण से कभी हमें जाना पड़ता है और ऐसी स्थिति में आए, जैसे कि गोविंद कविराज जी को अपने कुल की वजह से आना पड़ा, या फिर रुक्मिणी जी को स्वयं कृष्ण के इंतजार में बैठना पड़ा। तो वहीं तक हम अपने आप को सीमित रखें, अन्यथा दुर्गा खुद ही स्वयं प्रसन्न रहती हैं, शिव जी स्वयं प्रसन्न रहते हैं, सारे देवी देवता जो होते हैं वो भी पूरी तरह से प्रसन्न रहते हैं, उनको इस बारे में कोई भी चिंता नहीं होती है कि हमें जो है इनकी शरण में आने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो सारे देवी देवता स्वयं अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और दुर्गा जो है वो कृष्ण के कंट्रोल में, 9-10 चैप्टर 9-10 श्लोक जो है भगवत गीता क्या है, मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में है प्रकृति, मैं प्रकृति की अध्यक्षता में नहीं हूं, प्रकृति मेरे अनुसार चल रही है, इसलिए दुर्गा मेरे अनुसार चल रही है, और दुर्गा को मैं पूरा ये जो है कृपा दे रहा हूं कि तुमने मेरे लिए कार्य किया है। भगवान को कार्य करवाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने भक्त को और अपने प्रिय को क्या है यश दिलवाने के लिए भगवान ने करवाती है। इसलिए अर्जुन तुम ये ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, मैं नहीं बोलूंगा, ना मैं भक्त परिचिति ही कि मेरे भक्त का नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो मैं अपनी बात को तोड़ता हूं, मैं अपनी बात को वापस हर वक्त अपने प्रोमिसेस को तोड़ देता हूं, इसलिए तुम मेरे ऊपर विश्वास मत करो और मेरी बात को कोई भी विश्वास नहीं करेगा, इसलिए तुम बोलो, क्योंकि एक भक्त की अगर बात को बोलोगे तो सारे के सारे सृष्टि को भी मैं साइड में कर दूंगा तुम्हारी बात को ऊपर रखने के लिए। तो इस चीज को यहां पर मैं विराम दूंगा, और किसी का कोई प्रश्न है कोई चर्चा है तो और आप कर सकते हो, और अगर कोई प्रश्न चर्चा ना हो तो मैं कुछ प्रश्न करूं आगे। जी
हरे कृष्ण भाई, प्रश्न ये था कि जैसे वसुदेव जी आते हैं और एक्सचेंज करके लेके जाते हैं वहाँ पर उस कन्या को और भगवान कृष्ण को छोड़ देते हैं उधर, तो जनरली जैसे कोई ना कोई नर्स आया धात्री होती है प्रसव कराने के लिए, तो मैया यशोदा तो थक कर सो गए थे, तो वहां पर बाकी किसी और ने भी देखा, बाकी किसी ने भी देखा नहीं, मतलब पुत्र है पुत्री है, तो ये मतलब योग माया का अरेंजमेंट है या फिर कुछ और भी रीजन है इसका?
प्रभु जी का बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जब वसुदेव जी आए तो उस समय वहां पर क्या हुआ और वो क्या योग माया का ही अरेंजमेंट था, तो प्रभु जी ने खुद ही अपना उत्तर दे रहे हैं प्रश्न के साथ। बिल्कुल सही उत्तर जो है वो यही है, पर इसकी गहराई बहुत लंबी है जो आप बताना चाह रहे हो, इसमें बहुत विस्तृत है कि जैसे योग माया ने वहाँ पे सारा अरेंजमेंट कर दिया था, सारे जो है किवाड़ खुल गए थे, उनके जो जंजीर थे वो खुल गई थी, तो उस समय लोगों ने जो गोकुल के अंदर महावन या गोकुल जो बोलते हैं हम लोग, वो सारा का सारा जो है वो जिनको मुख्य लोगों को पता चल गया था कि हाँ जो यशोदा के यहाँ पुत्र हुआ है, और सब लोगों जो ढाई माताएं होती हैं और सब होती हैं जो आप बता रहे हैं, उन सब लोगों ने सेलिब्रेट करके यशोदा प्रसूति की पीड़ा कहते हैं ना उसको जो उसकी होती है, पर यशोदा को कोई पीड़ा नहीं हुई थी यशोदा, क्योंकि स्वयं भगवान स्वयं आ रहे हैं, परम ब्रह्म आ रहे हैं, तो यशोदा सो गई थी और उसको सुला दिया था योग माया ने, और सबके सब पूरी जगह खाली हो गई थी। और जब वसुदेव जी आ रहे हैं तो जैसे यमुना जी ने भी रास्ता दे दिया, और शास्त्र बताते हैं यमुना जी कैसे रास्ता देते, जैसे स्वयं समुन्दर ने राम जी को रास्ता दिया था, और यमुना जी स्वयं भी कौन है, कृष्ण की पटरानी है, तो वो भी उछल उछल रही थी कि कृष्ण के चरणों की किसी तरह से मैं क्या करूं, छू लूं उसको। तो जब वहां पर वसुदेव जी पहुंचते हैं तो आसपास शोर मच रहा है, देखिए बड़ा सुंदर बताया हुआ जीव गोस्वामी ने कि उस समय शोर मच रहा है, कृष्ण यशोदा के यहां तो पुत्र हुआ, यशोदा यशोदा और नंद के यहां पुत्र हुआ, ये हुआ, पर आनक दुंदक दुबी जो इनको बोला जाता है, इनका ध्यान केवल यह था कि मुझे फटाफट वापस जाना है, वो अपने लक्ष्य के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया हुआ था, अपनी जॉब के ऊपर पूरी तरह फोकस थे, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे आना है यहां से और वापस जाना है। उनको ये भी नहीं पता था कि मुझे पुत्री लेके भी जाना है, उनको नहीं कुछ पता था, वो सीधा जाते हैं वहां पर और पुत्री को उठाते हैं और ले चले जाते हैं। और ये सब बातें जो हुई, इतना अच्छा बता रहे जीव गोस्वामी कि उन्होंने शब्द बोला है, अनुसंधान करने का भी प्रयास नहीं किया, अनुसंधान मतलब रिसर्च ये नहीं करे कि लोग क्यों बोल रहे हैं कि यशोदा के यहां पुत्र हुआ है, पुत्र कहां से हुआ, पुत्र तो अगर है तो पुत्र दिखेगा वहां पे कुछ है, उनका कुछ ध्यान नहीं था, पूरी तरह कॉन्सेंट्रेशन थी। और जो बात ये थी कि योग माया ने उस समय सब कुछ जो है वहां पर ऐसा स्थिति बना दी थी कि वो सीधा गए और उठाया और वापस आ गए वहां पर।
मतलब प्रभु जी इसमें ऐसे ही समझ आ रहा है कि लोगों ने पहले से यकीन कर लिया था कि पुत्र ही हुआ है बिना देखे?
नहीं, पुत्र हुआ था, हुआ है, और सब लोगों ने सेलिब्रेट किया, कर लिया, देख लिया था, और उसके बाद सब लोग चले गए थे अपने घर में सोते हुए, और सुबह भी पुत्र मिला। उसी बीच में जो है जैसे आठवें नौवें का लगन लगा ना यहाँ पे, जो इसमें स्पष्ट जो बता रहे हैं कि जो लगन हुआ था वो आठवें नौवें के रात का इकट्ठा हुआ था, जिसमें योग माया जो है उस समय उसने जन्म ले लिया था, तो जिस क्षण वो जन्म लिया ये आए और उसे फटाफट उठा के ले गए, तो वो तब तक सो चुके थे और हुआ वो था। क्लियर जी प्रभु जी?
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जैसे देखते कि जैसे वसुदेव जाते हैं और उनकी यशोदा मैया की पुत्री को उठा ले आते हैं, इधर उधर परपट में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कोट करते हुए बाबा जी लिखते हैं कि अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे किसी की बच्चे को हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं और इसके बाद भी दे कैन नॉट बी ब्लेम्ड, तो ये कौन सा सिचुएशन है, कौन सा केस है, कैसे समझ सकते हैं इसको?
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया इसके बारे में, तो मैंने तो पढ़ा नहीं है, मैं तो उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, बट ये है कि यहाँ ये डिटेल जो उसमें यही बात समझ में यही आती है कि ये सब जो है वो अरेंजमेंट था जो सारा का सारा था। और जैसे हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मा जी ने भी स्वयं बोला है, और इसमें ब्रह्मा जी ने भी बोला है और कृष्ण ने भी आदेश दिया है, और कृष्ण ने भी ये बोला है कि तुम मेरी पुत्री, तुम मेरी बहन के रूप में होगी और तुम यहाँ पर आएगी, यहाँ पर पहुँचोगी। तो वो लेकर जब गए वहाँ पर तो उन्होंने केवल मैसेज पहुँचाना था कि दुर्गा को तो मारने के सवाल ही नहीं होता, और वो जिस तरह खड़ी हो वहाँ पर हो गई तो जो कंस है वो इतना डर गया था कि उसे सोचा अब तो कुछ, दुर्गा जिसकी कोख से जन्म ले ले तो वो कौन होगा। और वो प्रभुपाद जी इसके बारे में स्पष्ट बता रहे हैं, असुर लोग दुर्गा और शिव के सबसे बड़े भक्त होते हैं, और इसीलिए उन वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए। तो इसलिए आज का जो श्लोक है, इससे पहले श्लोक में प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या हाल है, कि वो और ज्यादा चंबित हो गया था, और ज्यादा डर गया था कि अब तो दुर्गा जिसकी को जन्म हुआ है तो आठवां बच्चा है या नहीं है उसके बारे में मुझे क्या मत क्या लेना देना, ये बहुत ही दिव्य लोग हैं, इनको फटाफट छोड़ दो। तो वो जो आप कहना चाह रहे हैं वो हो भी सकता है कि जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि उसमें उन्होंने जो है वो एक पुत्र एक बच्चे के लिए दूसरे का हुआ, पर ये सारा का सारा मैं देख रहा हूं कि पहले से नियति ने पहले से डिसाइड किया हुआ था। हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी यहां क्लियरली बताया ब्राह्मणों अभिप्राय, ब्रह्मा जी का अभिप्राय था कि स्वयं द्विभुज रूपेण कार भेदेण स मिलिष्यति, जो द्विभुज दो भुजा वाले जो कृष्ण है उसी के साथ फॉर्म फॉर्म आकार भेदेन आकार जो उनका आकार है निराकार नहीं है कृष्ण, जो आजकल लोग बोलते हैं निराकार है ये है, उस आकार भेदेन सह मिलिष्यति उसके साथ ही तुम जन्म लोगे और फिर तुम वहां पर जाओगे। ये स्वयं उधर उनको उन्होंने साफ बोला, और ये कि मेरे कुल में तुम्हारा जन्म होगा है ना, कुले अस्माकम भविष्यसि, मेरे कुल में ही तुम जन्म लोगी, मेरी तुम बहन बन के जन्म लोगी। तो उस हिसाब से हम ये सोच सकते हैं कि जो ये नियति के हिसाब से और सारा विश्वनाथ चक्रवर्ती जो बता रहे हैं कि पुत्र को लिया पुत्री लिया, जबकि उसका विनाश तो होना ही नहीं था, दुर्गा माता ने स्वयं दुर्गा है और वो स्वयं ऊपर प्रकट हो गई और हुआ है। नहीं तो बहुत सारे जगहों पे तो बोला गया कि जैसे कौन से जो आतत आई है उनको मारना अलाउड है, किसी की पत्नी कोई उठा ले, कोई अगर घर में आग लगा दे, तो ऐसा अगर कोई है कोई धर्म है तो उसमें धर्म में हो भी सकता है।
जैसे अभी तो चिदर अरेंजमेंट था, लेकिन भागवतम या भगवत गीता में जो भी इस टाइप के जो लाइनें या श्लोक्स हैं वो तो कॉमन पीपल के लिए भी है, फिर वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मतलब कि अपने बच्चे हाँ। को तो उसको कैसे समझेंगे,
तो इसीलिए साधु शास्त्र आचार्य बने हुए हैं ना, हमें समझना चाहिए, क्योंकि कॉमन लोगों के लिए तो फिर कन्फ्यूजन भी होता है उसमें, तो ऐसे लगे कि भगवान राम और जो क्षत्रिय सारे चारों नियम को भी तोड़ते हैं। देखिए क्यों नहीं, वो जो है मांसाहार भी बहुत जगह पे किया जाता है, भगवान राम की बात नहीं बस जनरली देखो आप उनको करा जाता है, उनको जो है वो और प्रभुपाद जी की अगर आंखों से दृष्टि से ना देखा जाए तो अश्वमेघ यज्ञ क्या है, गावलाम सर्मनी है क्या, है ना, तो उनको जो अगर एक पत्नी के अलावा और पत्नियां भी उनकी होती है, तो उस आचार्य की दृष्टि से साधु शास्त्र आचार्य बोला गया, उस दृष्टि से अगर देखेंगे तब समझ में आएगा। और अगर श्रीमद् भागवतम को एक सामान्य दृष्टि से जाएंगे और सप्ताह के रूप में जाएंगे और लोग जाएंगे तो वहां कंफ्यूज होंगे, इस चीज को इस तरह समझना चाहिए। ठीक,
इधर मतलब केस कौन सा था मुझे समझना है, सिचुएशन ये कौन सा केस है, कौन सा सिचुएशन है कि ऐसा एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब उसमें लिख रहे हैं सैक्रिफाइस करके अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे के बच्चे को हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं।
हाँ वो एक बार देखना पड़ेगा प्रभु जी कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर चल रहा है बात और किस बारे में हो रहा है, क्योंकि ऐसे तो फिर लोगों को समझ में कुछ और तरीके से आएगा, लोग किसी और तरीके से भ्रमित होंगे ना वहां पे क्या है, बट आप इस चीज को यहां पर यही समझिए कि कृष्ण की अरेंजमेंट है ना, जब जैसे अब जो है वो गंगा जी ने कितने पुत्रों को मारा था भीष्म पितामह के आने से पहले, हरे को पानी में डिबो रहे थे ना पूरी तरह से, तो उसमें कितने लोगों को हम जो मार रहे थे उस तरह से, तो ये चीज से देखा जाए तो किस कंटेक्स्ट में और कहां था, तो उसके बारे में पता चला कि क्यों मारा जा रहा था, है ना, वो सब लोग कौन थे, है ना, वसु थे, उन वसुओं को मारा, उसके बाद में भीष्म पितामह आया, तो वो कौन सा सही हो सकता है बात। अब लोग सामान्य लोगों के अपने बच्चों को पानी में डुबोते रहो, चुप बैठा रहेगा क्या उसका पति, मारते रहे मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, नहीं मैंने तेरे साथ जो है ये वर्णन किया है, तो कहां पर क्या चर्चा चल रही है हमें उस चीज को किसी कंटेक्स्ट में देखा जाएगा। हाँ प्रभु जी ने बताया इसमें कहते विश्व जागरण सेज दैट वन कैन नॉट बी ब्लेम फॉर प्रोटेक्टिंग वन ओन चाइल्ड एट द सेक्रीफाइस ऑफ अदर्स, फर्दर वसु कैन नॉट बी अक्यूज ऑफ कैनस सिंस एक्शन वर इम्पेल्ड बाय द फोर्स ऑफ योग माया। क्लियर है इस पे, आपने वो पहली वाली लाइन बिल्कुल सही पढ़ी, उसके आगे क्लियर कर दिया है कि दिस इज बाय इम्पेल्ड बाय द फोर्स ऑफ योग माया, कि योग माया ने क्लियर किया हुआ है, तो बड़ी जल्दी प्रभु जी ने निकाल ही दिया, हम कंटेक्स्ट देखना चाहते थे प्रभु जी ने और स्पीड में और ज्यादा कर दिया, देखने की आवश्यकता ही वही कि यही क्लियर कर दिया, आगे की तीन लाइन है ना उसमें लिखी है, पढ़ा आपने, फिर पढ़ा था तो फिर आप टेस्ट कर रहे थे अच्छा है प्रभु जी मेरे को भी क्लियर हो गया, मैं तो धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने क्लियर कर दिया, और मिल भी गया कि वो जो चार लाइनों से मुझे भी और जो मैं बोल रहा था वही निकल कर आ गया कि योग माया का है, तो हाँ वो बात सही है। हाँ बट वो आगे के तीन लाइनें भी पढ़वा दो उनको, जब हो जाएगा तो उससे और क्लियर हो जाएगी भाई योग माया ही आ जा रही है। और किसी का कोई, जी प्रभु जी सॉरी सॉरी प्रभु जी आप प्लीज
बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम आपने बताया योग माया है एक महामाया है, तो हम पहले यही सुनकर आ रहे थे कि महामाया दुर्गा देवी है और योग माया
बहुत अच्छा
भगवान की अंतरंग शक्ति है, अब ये भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि राधा रानी है या पौर्णमासी है या सुभद्रा है, तो योग माया कौन है और महामाया कौन है, और मतलब थोड़ा सा और डिटेल में।
अच्छा, राधा रानी को तो हम अलग करेंगे, जो बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति को अगर आप, वो अलग बात हो गई, वो तो इसलिए अंतरंगा वो अलग, इंटरनल एनर्जी अलग हो गई, पर एक्सटर्नल एनर्जी और योग माया अलग हो जाती है। तो योग माया जो है वो इनकी पार्टी, सिर्फ कृष्ण और कृष्ण के जो जुड़े हुए जो सारे के सारे जो कहते हैं ना, सारे जो पैराफ्रेनेलिया जो सारा आया गोलोकधाम, तो उनके साथ वर्क करती है। पर ये आपने जो पॉइंट है बड़ा अच्छा है, मैं भूल गया था, तो आप ही ने मेरे को फायदा कराया था। विष्णु पुराण 5.1.71 इसमें लिखा हुआ है, योग निद्रा महामाया वैष्णवी मोहितः। तो योग निद्रा है या जिसको हम बहिरंगा शक्ति बोल रहे हैं, वो यहां पर महामाया वैष्णवी है, ये स्वयं योग माया बन गई है। जो बहिरंगा शक्ति है वो कौन है? महामाया वैष्णवी। योग निद्रा महामाया वैष्णवी मोहिता, उसने सबको मोहित कर रही है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है, दुर्गा माता दोनों रोल को इकट्ठा हो गया उनका रोल वहां पर ही। पर जनरली क्या है कि जो योग माया का पूर्ण जो अवतार है वो पूर्णमासी के रूप में है, तो वो भी बड़ा गहराई है, पूर्णमासी है। फिर उसका पुत्र मधुमंगल के रूप में वो भी एक तरीके से देखा जाता है, पुत्र हो या सनातन, एक तरह ब्रह्मा ब्राह्मण है वो भी बोला गया। तो इस तरह से वो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफाइन किया गया, पर यहां पर हमें यही देखना चाहिए, यहां पे दुर्गा जी है वो दोनों रोल लेकर आई है, दोनों रोल इकट्ठा है, बट मगर मेन उसका रोल यही है कि वो यहाँ पर बहन के रूप में आ रही है, अनुजा के रूप में, तब उस पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। पर विष्णु पुराण इसको क्लियर कर देता है, क्योंकि ये योग निद्रा का भी कहीं कहीं पे आता है, जैसे आपने कहा ना, एक योग निद्रा का वर्ड भी आएगा, महाम आएगा। तो योग निद्रा कहाँ आएगा? जहाँ पर रुक्मिणी जी का जो है और देवकी के संकर्षण वाले भाव में आता है, उसमें बड़ा क्लियर है इसमें कि योग निद्रा ने जो है रुक्मिणी जी को सुला दिया। योग निद्रा ने क्या किया? वही योग निद्रा पहले देवकी के गर्भ से श्री रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम को आकर्षण करते हुए अपना पराक्रम दिखा गई। मतलब यहां यह बता रहे कि योग निद्रा ने कार्य किया, उनको सुलाया, निद्रा डाली किसकी? रोहिणी के अंदर, वो सो गई, और सोते सोते ही क्या किया उन्होंने, उसके गर्भ को, देवकी के गर्भ को जो है वो वहां से हटाया और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। समझे नहीं समझ रहे? रोहिणी भी सातवें गर्भ में थी और देवकी भी जो थे वो सातवें महीने में, गर्भ नहीं, वो जो सातवें गर्भ का सातवां महीना चला, दोनों का एक ही टाइम था। तो वो जो कहते ना यहाँ पर कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, एक जो जो यहाँ से जो किसी, व्हाट इज दैट कॉल्ड, सरोगेट मदर्स, जो सरोगेट मदर, एक मदर की उसमें होता है, तो सरोगेट मदर का जो क्लियर वर्ड है वो यहाँ पर किया गया। यहाँ से उठाया, पहले यहाँ से हटाया जो रुक्मिणी के जी उनके उसमें से करते हैं, रोहिणी के वहां से, और ये उठा के देवकी के वहां पर डाल दिया गया। कुछ क्लियर हो रहा है? जो रोहिणी जी थी वो कहां पर थी इस समय? गोकुल में। और देवकी जी कहां पर है? है ना? तो दोनों के जो जो गर्भ था उसके अंदर एक्सचेंज किया गया, एकदम एक्सचेंज हो गया। वो कैसे हुआ? वो योग निद्रा और योग माया ने किया, वही योग निद्रा है। और यहां पर उन्होंने क्लियर कर रहे, वो योग निद्रा महामाया, उसने यहां पे त्रस्त किया, यहां पे हटाया और देवकी के यहां से ट्रांसफर किया वहां पर।
थैंक यू ब्रोजी। और दूसरा ये प्रश्न था कि
पहला क्लियर हो गया ना,
मतलब और मैं पर्सनली पूछ लूं थोड़ा।
हाँ, पर्सनली, ये अच्छा।
दूसरा प्रश्न था मुझे कि जैसे एक आपने बताया भी कि हरिवंश पुराण से अष्टम गर्भम एक श्लोक था जिसमें बता रहे हैं कि यशोदा के नौवें गर्भ में माता दुर्गा प्रकट होंगी नवमी पे भद्रा की। हाँ। तो ये यशोदा का अष्टम गर्भ कृष्ण बता रहे हैं, तो पहले सात गर्भ कौन थे?
किसके? नहीं, ये उसके बारे में बता रहे थे। तसा नवमो गर्भ, ये जो हरिवंश का है ना कृष्ण आदे, नवमो गर्भ कुले अस्माकम भविष्यसि नवम्याजम संजाता कृष्ण पक्ष से वही तिथि। ये जो है ये देवकी के बारे में उन्होंने बताया हुआ, इस बारे में कि देवकी के साथ में जुड़ा हुआ है वहां पर, क्योंकि कहीं कहीं पे देवकी को भी इसके बारे में बताया हुआ है, तो वो देवकी के साथ में जुड़ा है।
पर देवकी का नौवां गर्भ में
कौन सा? नहीं नहीं, देवकी जो पहले आठ जो गर्भ है उसको देवकी के साथ में उन्होंने वहां पर समझाया है कि वो जो है वो पहले वहां पर है, पर क्योंकि जब ये जब योग माया वहां चली गई तो फिर वो उसकी पुत्री के रूप में आ गए। जैसे प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं ना कि देवकी के पुत्र है, देवकी के पुत्री के रूप में ये योग माया है, तो इस चीज को क्लियर करने के लिए वहां पर बताया गया। परपट में पढ़ा आपने, इसमें बोला गया कि देवकी की पुत्री है योग माया।
सुभद्रा महारानी भी नौवीं पुत्री है ना देवकी की, मैं उस सेंस में पूछ,
हाँ वो अलग है, वो 1.5 साल बाद जन्म लेती है,
है तो नौवां ही गर्भ उनका,
हाँ वो बाद में लेती, वो लिया जाता है,
लेकिन वो वाले
वो अलग है, पर यहाँ
परपट अलग होगी, उसकी डेट अलग होगी,
यहाँ परपट जो है उसके अंदर देवकी के बारे में बताया गया, जिस परपट पे हम लोग सीमित रहेंगे ना, तो परपट में बोला गया।
और वैसे माता यशोदा के कृष्ण से पूर्व भी कुछ
नहीं, तभी तो वो बोल रहे थे कि वो 80 साल के हो गए हैं दोनों, और अभी तक जो है उनके कोई पुत्र नहीं हुआ है, और इतना मार्मिक होता था, बहुत मार्मिक थी बात पूरे गोकुल के अंदर, कि लोगों ने अपने आभूषण तक पहनने बंद कर दिए थे, कि कहते हैं कि हमारी महारानी जो रानी है, जब उनके यहाँ पर सुख नहीं है, जब वहाँ पर कुल में कुछ जो है वो ऑस्पिशियस नहीं है, तो उन्होंने अपना आभूषण तक पहनना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उनको पता ही नहीं था कि क्या, वो इतने दुखी रहते थे कि हमारी रानी के यहाँ पर कब पुत्र होगा, हमारे राजा के यहाँ पर कब पुत्र होगा, इसी भाव में वो रहा करते थे। तो जब पता चला कि पुत्र हुआ है, तो उनको आभूषण पहनने की आदत ही नहीं थी, तो जब वो सबके सब भागे कि नंद के आनंद भयो ये यशोदा लाल के, सब भागने लगे और भाग रहे थे और आभूषण पहन रहे थे, तो उनको आदत थी नहीं, कोई नाक की को कान में पहन रहा था, कान को हाथ में पहन रहा था, ऐसी हालत हो जा रही थी, क्योंकि सबके सब इतने भाव में थे कि अगर यशोदा का दुख है तो हमारा दुख है, यशोदा के पास कुछ नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है, इस भाव से वो रहा करते थे।
जैसे रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, तो ये देवकी और यशोदा माता दोनों को साइमल्टेनियसली
एक ही टाइम पे
12 बजे,
हाँ उसी टाइम पे 12, दोनों का एक ही टाइम पे हुआ है, ये बल्कि ये श्लोक बहुत क्लियर है कि दोनों ने प्रसव एक ही टाइम पे किया है, आप लोग हैरान हो गए समझ के, बिल्कुल श्लोक है उसमें कि एक ही टाइम पे दोनों का होता है, और एक डिलीवरी एक ही टाइम पे दोनों की उसी समय होती है, उसी तिथि में उसी टाइम पे कृष्ण भाद पक्ष की,
और फिर बाद में गोकुल में फैल जाती है न्यूज, और फिर सब सो जाते हैं, फिर योग माया प्रकट होके मथुरा ले जाती है भगवान को, फिर सुबह तक वो वसुदेव,
इतना आसान नहीं है, इसके लिए और क्लासेस चाहिए। एक ही दिन में सब चट कर जाओगे आप, मेरे को मौका कैसे मिलेगा और बताने का। आप सही कह रहे हैं, पर बहुत सुंदर उसका विचलन है, बहुत गहराई है,
भगवान कृष्ण की राउंड ट्रिप हो जाती है एक तरह से, गोकुल टू मथुरा एंड देन अगेन टू गोकुल,
सारा पूरा फुल सर्कल है, क्लोजिंग द लूप, पूरा लूप क्लोज होता है, पूरा फर्स्ट क्लास उसमें होता है, कृष्ण पूरा मजे लेने जाते हैं, उनका तो मन करेगा चलो आज चलते हैं वहां पे, उसको इसके भी वो जब चार भुजाएं इनके अंदर घुसते, चार भुजा वाले जो वसुदेव नंदन नंद नंदन के अंदर आते हैं, तो फिर वो बोलते, अगला प्रश्न आता है कि उनके जो है वो जो चार हाथों में जो आयुध थे वो कहाँ चले गए, है ना, शंख चक्र, तो वो बताते हैं, वो भी गहराई है, इसलिए वो एक पूरा क्लास है, दो जो है उनके हाथ में चले जाते, दो उनके चरणों में पहुंच जाते हैं, और सुदर्शन है वो अदृश्य हो जाता है वहां पर ही, इसलिए वो वापस आते हैं वहां पे, तो बड़ा सुंदर वो एक एक वृतांत जो है वो बड़ी गहराई और बड़ा प्रेम और रस से भरा हुआ है, कि कैसे सब चीजें होती हैं और क्यों होती है, तो अभी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं ताकि अगली बार और पढ़ेंगे हम लोग, पर ये मुख्य बात यही है जो प्रभु जी का आदेश है कि ग्रंथों को और हम लेने का प्रयास करने का, हम पढ़ने का प्रयास करेंगे हरिवंश में, और उसमें उसकी आवश्यकता कहीं नहीं है, केवल जब फिर ये आज्ञा ली जाती है, जब पूरी तरह से हम इसको पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो उसको समझ नहीं पाएंगे, चैलेंज है, मतलब ये मजाक नहीं है, मुझको कम से कम 6-8 घंटे लगते हैं एक एक इस लेक्चर को तैयार करने के लिए, और वो भी आज्ञा लेके आशीर्वाद लेके अपने काउंसलर से, अपने जो टीचर से जीता मित्र प्रभु हैं उनसे परमिशन लेके, और फिर वो आगे लेके कैसे करना है, क्यों करना चाहिए, है ना, नहीं तो इसमें भ्रमित हो जाते हैं और समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए प्रभुपाद बुक्स के थ्रू समझना है, और प्रभुपाद ने जब बोला है इसीलिए हम इसको ले रहे हैं कि दोनों के पुत्र एक ही है, यहां तक ही प्रभुपाद कहते हैं शी केम विथ हिम, प्रभुपाद बोलते हैं कौन, दुर्गा, शी केम विथ हिम एंड एग्जिबिटेड डिफरेंट एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टेंस, दोनों साथ में एक ही टाइम पे आए और उन्होंने पूरा का पूरा ये कार्यकाल किया, इसलिए बताया ना ब्रह्मा जी ने कि दोनों को इकट्ठे द्विभिज रूपेण आकार भेदेण सब मिलिष्यति, तो इसीलिए है, बट बहुत ब्यूटिफुल है, बहुत सुंदर है, तो इसीलिए जो देखो जब अक्रूर जी जब लेके जाते हैं प्रभु जी, तो उसी समय क्लियर हो जाता है कि चार भुजा वाले कृष्ण कहां पर है और दो भुजा उसी के अंदर ही है, चार भुजा वाले कृष्ण जो है वो कहाँ गए, वहीं बैठे हुए थे जो दर्शन किया, और जब अक्रूर जी बाहर आते देखते, अरे ये तो यहाँ पर है, अरे वहां पर है, देखते दोनों अलग अलग दिख जाते हैं, तो वो है उसी के अंदर ही, और जो लड़ाई करने का सब पराक्रम करने का सारा कार्य इन्हीं का ही है, द्वारकाधीश का, यही करो चार भुजा वाले, दूसरी जगह दिखते कहां पर है, जब रास के अंदर, जब उसके बाद में कौन होती है, गोपियां जब जाती हैं तो देखती हैं कि विष्णु फॉर्म लेके चारों जब बैठे हुए तो ध्यान भी नहीं देती कौन बैठा है, हमें क्या लेना देना इससे, हमें तो केवल कृष्ण से मतलब है। ये तो है जी, जी? बहुत सुंदर, उन्हीं से ही पूछ रही है और वो कि उनको पहचान ही नहीं रही है, पर ये यही बात है कि वो उन्हीं के अंदर ही है, उन्हीं के साथ में है, तो वो जो अंदर अंदर जो पूरी तरह है और बाहर आ जाते हैं, तो हम भी हृदय के अंदर बाहर उनको रखें, प्रेम से रखें, अंदर चैत्य गुरु के रूप में और बाहर दीक्षा गुरु को और प्रसन्न करें, तो हम लोग और ज्यादा समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी इस माया के लिए बहुत ज्यादा हम लोग को इस बात बताते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी का मैंने एक पॉइंट पढ़ा था कि हाउ टू यू कैन बी लिबरल ऑफ माया, अगर तुम इफ यू कैन बी फियरलेस ओनली इन एसोसिएशन, नहीं तो यू विल थिंक ऑलवेज ऑफ माया, यू विल एक्ट ऑलवेज ऑफ माया, यू विल कंटेम्पलेट माया ऑलवेज। आप विचार भी उस पर करेंगे, हम सब लोग उसी पर विचार करेंगे, उसी में ही कार्यरत रहेंगे और उसी के बारे में चिंतन करते रहते रहेंगे। थिंक एक्ट एंड कंटेम्पलेट, ये गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं। तो अगर हमें फियरलेस होना पड़ेगा कि हमें इस जकड़ी से बाहर आना पड़ेगा, अगर एसोसिएशन और डिवोटीज में नहीं रहेंगे, बार बार वो बताते हैं एंथुजियाज्म इज द की, एक जगह बताया था उन्होंने मुझे कि एंथुजियाज्म इज द की, अगर आप एंथुजियास्टिक नहीं है कृष्ण कॉन्शियस में, एक सरल तरीका है चेक करने का हमारे एंथुजियाज्म का कि जहां भी अगर हमें मौका मिल रहा है क्या हम प्रचार कर सक रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसी से टेस्ट हो जाता है, लिटमस टेस्ट है कि हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर हमें कोई मौके से किसी ऑटो में या बस में बैठ के जा रहे हैं और हमें अपनी चैंटिंग के ऊपर ज्यादा चिंता हो रही है वहां पर ही, तो कि चैंटिंग तो आगे पीछे कर सकते हैं, पर साथ वाले को क्या प्रचार करके कृष्ण भक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये होगा बात वहां पर। अगर हमारे अंदर ये एंथुजियाज्म है कि हम लोग इसको प्रचार में संकीर्तन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर अपने आप ही कृष्ण की जो शक्ति है, माया शक्ति है, वो हमारे साथ देगी, क्योंकि वो अनुजा है, वो उसकी छोटी बहन है, वो हर वक्त प्रयास करेगी कि मेरे बड़े भाई के पास में मैं ऐसे किसी को जाने नहीं दूंगी। ठीक है, इस चीज को
थैंक यू जी।
प्रभु जी का कोई प्रश्न था? क्षमा चाहता हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा, तो परमिशन प्रभु, लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी का, उसके बाद में पूछना चाहता है, कोई चर्चा करना चाहे।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं जाते नहीं है
जी,
वहीं रहते हमेशा, और जो ब्रजवासी उनका भगवान से बहुत प्रेम भी है, उनका कोई सीमा भी नहीं है प्रेम की, तो जब भगवान चले जाते हैं वहां से और भगवान वृंदावन में भी हैं, उनको इतना विरह हो रहा है, वो इतने दुखी हो रहे हैं, वो सब क्या, ये क्या सब है?
आप वो मथुरा कह रहे हैं, मथुरा में चले जाते हैं फिर द्वारका
चले जाते हैं ना, हाँ, और वृंदावन में तो है भगवान, तो है वृंदावन में भी है, तो इतना विरह हो रहा है फिर भी नजर नहीं आते भगवान उनको, ये सब क्या भाव है?
बहुत सुंदर भाव है, आपका ही भाव इतना सुंदर है, गहराई है, इतनी गहराई है इस भाव की, पता आपको क्यों है? इसको भी बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने बताया है और इसको जीव को कोट किया, बहुत सुंदर कोट किया है, ध्यान से समझिए कि जब आप पूरी तरह से सेपरेशन में होते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई एम नॉट एबल टू एसोसिएट विथ एवरीवन, एक लेटर में लिखा था कि डोंट थिंक दैट आई एम नॉट हेयर विथ यू, तुम्हारी इनिशिएशन भी मैं जो है पत्र से कर रहा हूं, तुम्हारे बीट्स भी मैं पत्र से भेज रहा हूं, ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूं, इन सेपरेशन वी आर मीटिंग टूगेदर, वी आर नेवर अपार्ट, इन सेपरेशन वी आर नेवर अपार्ट। जो विरह की जो बात, इतनी ज्यादा शक्ति है उसके अंदर, जीव गोस्वामी इसको गहराई में बताते हैं, इसी प्रभुपाद जी की बात को मैंने उस पर देखा कि विरह के अंदर वो इतने चिंतन में है, ब्रजवासी इतने चिंतन में होते हैं कि विरह के अंदर सोचते सोचते कृष्ण को वहीं प्रकट कर लेते हैं और उसका संग कर लेते हैं, समझ रहे हैं? कोई विरह में पूरे समय चिंतन करता रहेगा, सोचता रहेगा तो भगवान को अपने साथ पूरे समय ही उसका संग कर रहा है, उनको प्रकट करके उनका संग करते जा रहे हैं, तो वो विरह इतनी आगे की बात है कि वो इसके अंदर इतने ज्यादा उनकी स्थिति इतनी आगे प्रवीण हो गई है कि उनको उस विरह के अंदर ही कृष्ण का दर्शन कृष्ण के दर्शन से ज्यादा होता है, पर हमारी स्थिति वैसी नहीं है। हम कभी अभी जो है राधिका रमन जी के छोड़ के हम बाहर जाते हैं तो हमें यह पता नहीं होता आज की उन्होंने ड्रेस कौन सी पहनी होगी, तेरा विचार कर किसी को यही याद नहीं होगा आज किस ग्रुप में होंगे, उस डीटी के बारे में सोचेंगे नहीं हम बाहर जाकर, अपने घर में अगर गोपाल है वो है उनको चिंतन में ही नहीं रहेंगे कि उसके बारे में क्या है क्या नहीं है, केवल थोड़े घंटों के लिए। और वो क्या चिंतन है कि कदली वन में जहां राधा रानी बैठी हुई है वहां पर विरह की इतनी ज्यादा उनकी विरह हुई है कि कदली वन जल के राख हो गया है जब उद्धव जी को ढूंढने जाना होता है। यशोदा जब कृष्ण के लिए ऐसी ललायत है कि कोई भक्त उससे मिलने जा रहा है तो कोई देखता नंद बाबा के पास पूछ रहा है कहां यशोदा का घर, ब्रजवासियों से पूछ रहे कहां घर है, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो छोटी सी जो पानी की नाली है इसको है इसी को तुम फॉलो करो वहां पहुंच जाओगे। बिल्कुल ठीक है, बोला नाली आ रही चलता हूं। थोड़ी देर पूछा है कौन सी नाली, किस चीज की नाली है, तो बोला क्या है, बोला ये यशोदा के निरंतर अश्रु धारा है जो कृष्ण की विरह में चलते जा रहे हैं। अपने लाला के लिए वो इतनी ललायत है, इतनी पूरी तरह से है कि वो कृष्ण के अलावा अपने आप को कुछ और सोच ही नहीं पाती है, कृष्ण ही कृष्ण सोचती रहती है। नंद बाबा के ऊपर भी अपराध कर जाती है कि क्या तुम्हारे तुम कुछ ही काम के नहीं, ये नहीं है उस मर्यादा में जहां पर वो डरती रहती है। ये जो हमारा अभी दामोदर अष्टकम चल रहा है उसमें नंद बाबा ने गहराई में बताया हुआ कि जब वो देख लेते हैं कि भाई हाँ तुझे किसने बांधा, ये उससे प्रश्न करते हैं, अरे तुझे लाला कौन है वो जो बांधने वाला है, मुझे बता मैं उस पर कड़ी सजा दूंगा। बोलते कोई और नहीं है, हमारी अपनी वाली अपनी माई है, ज्यादा शोर मत मचाओ। वो ये बता रहे होते तो यशोदा डर के मारे दो दिन तक उनके सामने नहीं आती है। मर्यादा के लिए, मर्यादा है, शिष्टाचार है कि मैंने पति के को दुखी किया है, पति के आज्ञा के विरुद्ध उन पुत्र को जो है बांध दिया, पूछा भी नहीं कि मां का हक है कुछ करने के लिए, पर इतना बड़ा कष्ट हो गया पूरे उसमें कि इतने बड़े बड़े पेड़ गिर गए, अर्थक्वेक आ गया, ये हो गया वो हो गया, तो वो मर्यादा का, तो वो विरह जो आप बोल रहे हैं वो इतनी गहरी वाली बात है, उस विरह के अंदर ही संग है। उस बात को समझना और उसको गहराई में लेने के लिए बहुत है, पर हम वो नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रभुपाद जी ने बोलते हैं कि हमारी बस यही है कि वी गो बैक टू गॉड हेड, हम फटाफट, हमारे बस की बात नहीं, हम थोड़ी देर भगवान, हम इतने मूर्ख हैं, हमें ये है अभी जो है बैठे रहेंगे महामंत्र करेंगे थोड़ी देर में चीटी कट गई वहीं पर ही महामंत्र बंद, कोई और का मोबाइल के अंदर एक हल्का सा मैसेज आया महामंत्र बंद, है ना, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कुछ जब वहां पर पहुंचते हैं उद्धव जी देखते हैं तो वहां पर कोई सामान्य स्थिति नहीं थी ब्रज के अंदर। वो जो विरह की आप बात कर रहे हैं वो बहुत आगे की बात और बहुत सुंदर बात है कि उसी के अंदर ही संग है। ठीक है, तो यहीं पर विराम देंगे हम लोग और आशा करेंगे कि आप लोग और ज़्यादा जो है मंदिर के प्रतिनिधि और मंदिर के भक्तों को और जो यहाँ पर GBC है उनके शरण में आते हुए इस कक्षा में आते रहें रेगुलर और उनके निर्देश के अनुसार आगे अपने जीवन को बढ़ाते रहें, भक्तों का संग करें और चारों नियमों का पालन करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की।